أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور گزشتہ خطبہ جمعہ پہ میں نے اسی آیت کی تلاوت کے بعد چند ایسی انسانی غفلتوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس کی ذات کے اندھیرے ہیں. وہ غفلتیں جو انسان کی ذات پر اندھیرے بن کے چھا جاتے ہیں اور اسے حصول مقصد سے بے خبر رکھتے ہیں, اس کی پہچان سے ہی ناشنا رکھتے ہیں. وہ سب سے خطرناک اندھیرے ہیں جن سے آگے پھر ہر قسم کے گناہ پھوٹتے ہیں. اور قرآن کریم نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ اور ایک تدریج کے ساتھ اول معمولی ابتدائی حالتوں کا ذکر فرمایا, پھر ان سے پھوٹنے والی زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک حالتوں کا ذکر فرمایا, پھر آخری نتیجہ نکالا کہ اگر یہ مضمون اسی طرح تدریجاً بڑھتا رہے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک روئیدگی شروع میں تو نظر کو بھری لگتی ہے, سرسبز و شاداب کونپلیں جب پھول رہی ہوتی ہیں تو انسان کی نظر کو بہت پیاری لگتی ہیں, اور ان سے ان کے حسن سے استفادہ ایک معصوم سی چیز دکھائی دیتی ہے. لیکن پھر وہی کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور خوب تمبج اختیار کرتی ہے, ہواؤں کے ساتھ ناچتی ہے, رقص کرتی ہے اور بھی اس کے بونے والوں کے دل کو خوش کر دیتی ہے. لیکن انجام کار پھر اس پر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ زرد روح ہونے لگتی ہے اور خشک ہو کر ایسے چورے کی طرح جو پاؤں تلے روندا جاتا ہے, اس حالت میں وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے. یہ وہ مثال ہے جس کے متعلق میں اس پہلی آیت اس آیت کے پہلے حصے کے مختلف امور پر یا مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد پھر متوجہ ہوں گا. میں ذکر کر رہا تھا کہ اول ہے حیات لیب اور لحظ، اسی سے ہر قسم کی دنیا داری کا آغاز ہوتا ہے. کھیل کود تماشا ایک موسوم سی چیز دکھائی دیتی ہے، انسانی فطرت کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے. بچے بھی اپنا دل کھیل کود ہی میں بہلاتے ہیں، لیکن جوں جوں جوانی کے ساتھ ساتھ کھیل کود انسانی مزاج پر غلبہ پانے لگتے ہیں تو ان کے اندر گناہوں کی آمیزش ہونے لگتی ہے. کھیل کود کا انسانی مزاج پر غلبہ اس کو اعلیٰ مقاصد سے غافل کرتا چلا جاتا ہے اور توجہات کو تمام تر اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے جو زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس پہلو سے میں نے متوجہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی اس پہلو سے بر وقت متنبہ کرتے رہا کریں. جہاں ان کی دلچسپیاں کھیل کود میں اتنی پڑ جائیں کہ ان کے زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی راہ میں حائل ہونے لگیں، جہاں پڑھائی اور تعلیم ثانوی ہو جائے اور زندگی کی دنیا کے تماشے جو ہیں یہ بنیادی اور اصل مقصد بن جائیں، ایسے بچے ایسی جوان نسل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپنی منزل کھو دیتی ہے اور غلط سمت میں روانہ ہو جاتی ہے. یہ اگلا قدم جو تھا اس کے متعلق میں نے گزشتہ خطبے میں روشنی ڈالی، یہ پھر زینت اور تفاخر میں تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھیں، لہو اور لاب کا اپنی ذات سے تعلق ہے. ایک انسان کسی چیز کو پسند کرے اس میں کھویا جائے، کوئی بیٹھا اپنا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے تو کسی کا کیا لیتا ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تصادم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. ایک انسان جو ان باتوں میں مثلا میوزک ہے اسی میں بھی مگن رہتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا، میں اپنا وقت خرچ کر رہا ہوں، اپنا پیسہ لگا رہا ہوں. اور اگر شور پڑتا ہے تو اپنے کان میں وہ ٹوٹیاں دے دیتے ہیں. اور جہازوں میں بھی بجائے اس کے کہ ان پر یہ اعتراض ہو تمہیں سب کا امن برباد کر رکھا ہے، شور ڈالا ہوا ہے، وہ آرام سے اپنی ٹوٹی اپنے کان میں لگا لیتے ہیں. اور جہاز والوں نے بھی اب ٹوٹیاں مہیا کر دی ہیں سب کو، ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، میوزک سننی ہے، اپنی مرضی کے پروگرام دیکھو، لیکن ساتھ والوں کو نقصان نہ پہنچے. اس لہو اور لاب کا جو آغاز ہے وہ نفسانی ذاتی خواہشوں سے تعلق رکھتا ہے اور دوسروں سے متصادم نہیں ہے. پھر یہ چیز پھوٹ کر باہر نکلتی ہے اور زینت اور تفاخر میں تبدیل ہو جاتی ہے. زینت کا اختیار کرنا یہ بھی ہر انسان کی فطرت میں ہے، لیکن جب وہ زینت دکھاوا بن جائے تو پھر تفاخر کے رنگ میں تبدیل ہونے لگتی ہے. ہر وہ نعمت جو خدا تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو دی ہے وہ خدا کا شکر کرنے کی بجائے انہیں اپنا فخر دوسروں پر ظاہر کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور خدا کے سامنے سر جھکانے کی بجائے وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھانے لگتے ہیں. تو یہ تفاخر ہے. یعنی جس ذات نے دی تھی، جو نعمتیں کہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے میسر آئیں، بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کے شکر پر سر اس کے حضور جھکتا چلا جائے، اس کے عاجز اور کمزور بندوں کے مقابل پر اٹھتا چلا جاتا ہے. اور یہ تفاخر جو ہے یہ ہمیشہ نچلوں پر ہے. یہ لفظ تفاخر میں ایک داخل بات ہے. جو اپنے سے بڑے ہوں ان کے سامنے کوئی تفاخر کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی مجلس سے تو دور رہے گا تاکہ ان کے سامنے سکھ کی نہ ہو. جو غریب لوگ نسبتاً کمزور لوگ ہیں ان کے سامنے دکھاوے ہوتے ہیں، یا برادری کے لیے بھی دکھاوے ہوں تو جب تک ان سے زیادہ خرچ کر کے ان سے زیادہ دکھاوا نہ ہو اس وقت تک ان کا سر اونچا ہو ہی نہیں سکتا. بس اپنا جھوٹا سر اونچا کرنے کی خاطر وہ اپنے آئندہ اولادوں کے سر ہمیشہ کے لیے نیچے کر دیتے ہیں، قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں، بجائے اس کے دنیا ان کی تعریف کرے کہ واہ واہ انہوں نے خوب کیا، چند دن کی اس تعریف کے بعد پھر لامتیں پڑھنے لگتی ہیں کہ اس نے تو جو کچھ ورثے میں پایا تھا وہ بھی گوا دیا، کچھ بھی باقی نہ رکھا. تو یہ بھی ایک اندھیرے کی بڑی خوفناک قسم ہے. मगर जब ये आगे बढ़ती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा आखिरी शक्ल जो इसकी बनती है वो है तकाफुर फिल अम्वाल वल औलाद। अब तदरीज देखें कैसी उम्दा और मुतनासिब तदरीज है। एक नफ्स के अंधेरे ने नफ्स को एक साया मुहैया किया, उस साये तले नफ्स ने आराम पाया, लेकिन जब वो गहरा हो गया तो रास्ता देखने की सलाहियत से भी उसको आरी कर दिया। फिर वही चीज आगे बढ़ी तो अपनी नेमतों को दिखाने पर मुंतज हो गई और अकेला अपनी जात में इंसान सुकून पा ही नहीं सकता। फिर जब तक दूसरों के ऊपर वो फख्र न कर ले, जब तक दूसरों से ज्यादा अपने आप को दिखा न ले, उस वक्त तक उसके नफ्स को तस्कीन नहीं हो सकती। अब ये सोशल इवल में तब्दील हो गई है। जो पहले जाती नफ्स था अब ये तमदनी और सोशल नफ्स में तब्दील हो गया। और अगली जो दो बातें एक ब्रैकेट में बयान फरमाई गई हैं उनका ताल्लुक इंसानी इक्तसादियात और सियासत से है। तकाफुर फिल अम्वाल वल औलाद का ताल्लुक इंसानी इक्तसादियात और इक्तसादियात से है और ये दोनों एक दूसरे से ऐसा राब्ता रखती हैं कि गोया बाहम चोली दामन का साथ है, एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकती। इसीलिए खुदा तआला ने ये जोड़े भी खूब बनाए हैं, ऐसे जिनको एक दूसरे से अलग किया जा ही नहीं सकता। जब सियासत इंसानी दिमाग पर काबिज हो जाए, जब कौमों के इज्तमाई दिमाग पर कब्जा कर ले, तो ये सियासत महज अपने रोब को दुनिया पर कायम करने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई को कानूनी तौर पर अपने अहल वतन पर मुसल्लत करने के लिए नहीं, बल्कि हर किस्म की दौलत कमाने का जरिया बन जाती है। और यही सियासत जब बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर सर उठाती है तो इसके साथ दौलत का कमाना एक लाजमी जुज है, उसको अलग किया नहीं जा सकता। हजरत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमेशा ये फरमाया करते थे कि अंग्रेजों से यानी अंग्रेजी हुकूमत से आजादी का गुर इन लोगों को कुछ किसी को भी इल्म नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की तालीम देते हैं, कोई हथियारों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तालीम देते हैं, कोई अदम तआवुन के साथ जैसे गांधी जी की तहरीक थी इनको अपने मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने की तहरीक करते हैं। अब मैं फरमाया एक ही तरीक है, कोई दुनिया की कौम अपनी सियासत को दूसरी कौम पर गालिब करके महज ये लुत्फ नहीं लिया करती कि हम हाकिम हैं, जब तक उसके नतीजे में उस मुल्क की दौलत उनके मुल्क में मुंतकिल ना हो। अगर किसी मुल्क की दौलत किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल होना बंद कर दे तो कोई पागल नहीं है कि वहां जाकर वो सियासी निज़ाम को अपना जारी करे। और महज इस वजह से कि हमारी सल्तनत बड़ी हो गई है, सियासी गलबे को जारी रखने की फितरत इजाजत ही नहीं देती, क्योंकि कुछ देर के बाद ये मुसीबत बन जाती है। नज़्म व ज़ब्त कायम रखना, अपने खर्च पर कायम रखना, किसी और जगह जाकर ऐसी कौम पर अपनी हुकूमत जिताना जिस कौम को तुम्हारी हुकूमत पसंद नहीं है, और नतीजतन माली लिहाज से कोई भी फायदा नहीं। कभी भी दुनिया में ऐसी सियासत ज्यादा देर चल नहीं सकती, कौमें खुद ही अपना बोरिया बिस्तर लपेटती हैं और ऐसे मुल्कों को छोड़ देती हैं। तो हज़रत मुस्लिम माऊद ने एक मौके पर फरमाया और कई दफा जो निजी मजालिस में भी आप इन बातों का जिक्र छेड़ा करते थे तो उसमें भी ये बातें आती रहीं। अब ने फरमाया कि असल निजात का राज तहरीक जदीद की उस स्कीम में है जिसकी 19 निकात हैं। वो तहरीक जदीद की स्कीम ऐसी है कि अगर किसी कौम में राइज हो जाए तो दुनिया की कोई कौम भी वहां से माली फायदा नहीं उठा सकती। जो कौम अपनी जिंदगी के रहन सहन को सादा और गरीबाना बना ले, जिसको ना विदेशी कपड़ों में दिलचस्पी रहे, ना विदेशी जेवरात में दिलचस्पी रहे, ना विदेशी खानों में दिलचस्पी रहे, जिनको रोजमर्रा की साग और रोटी घर में मुयसर आ जाए उसी पर राजी रहें, जो अपना कपड़ा काटते हैं और उसी खद्दर पर राजी रहें, जिनको दिखावे के लिए किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं, किसी बैंक का मोहताज होने की जरूरत नहीं, वहां का बैंकिंग निजाम भी ज्यादा देर नहीं चल सकता, यानी उनके खून नहीं चूस सकता। नतीजा ये निकलेगा कि ऐसी कौम ही है जो दर हकीकत दुनिया में आजादी की सांस ले सकती है और गैरों को उस पर दखल देने का कोई मौका ही मुयसर नहीं आ सकता। आपने फरमाया कि जुर्म भी इन चीजों के साथ वाबस्ता है, जितने जराइम हैं वो अखलाकी कमजोरियों से वाबस्ता हैं, और जिस कौम की अखलाकी हालत दुरुस्त हो जाए, जराइम उसको इस तरह छोड़ कर चले जाते हैं जैसे सेहतमंद बदन को जरासीम छोड़ देते हैं। मौजूद हैं फिजा में, वही सांस हम सब ले रहे हैं जो बीमार लोग भी लेते हैं, मगर जरासीम सांस से अंदर जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इस बदन में, उस बदन में जो सेहतमंद हो। हाँ, जहां बीमारी के आसार देखेंगे वहां उनके अड्डे बनेंगे, वहां उनका फुट होल्ड यानी कदम जमाने की जगह बन जाती है, और फिर आगे वहां से वो फिर बाकी इर्द गिर्द के इलाकों की फतूहात के काम इंतजाम करते हैं। तो हज़रत मुस्लिम मौऊद ने बड़ी गहरी फरासत के साथ तहरीक जदीद को जारी फरमाया था ताकि जमात के अंदर जो लाभों लाभ की दिलचस्पियां हैं और उसके नतीजे में फिर एक दूसरे पर तफाखुर है, इनसे आज़ादी मिले, तो उन कौमों को जमात पर हुकूमत करने का शौक ही बाकी नहीं रहेगा, मुसीबत लगेगी ऐसी जमात पर हुकूमत करना जिनका मकसद तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद है। और सियासत का इससे आला निचोड़ दो लफ्जों में बयान हो ही नहीं सकता। अम्वाल की कसरत और औलाद की कसरत, जहां कुरान करीम का मुहावरा औलाद महज बच्चों के ज्यादा पैदा करने से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि कुरान करीम ने खूब इस मज़मून को खोला है, बार बार खोला है कि वो कौमें जो दूसरी कौमों पर गलबा हासिल करना चाहती हैं उनको अलग-अलग कुव्वत में दिलचस्पी होती है, और औलाद यहां बमाना अलग-अलग कुव्वत है, यानी जिस्मानी गलबा जो फौजी गलबा भी कहला सकता है। बहरहाल एक कौम को दूसरे पर जो फौजी या अददी बरतरी हासिल हो, कुरान करीम ने ऐसी कौमों के हवाले के साथ जिनका जिक्र कुरान करीम में तारीखी तौर पर मिलता है, हमेशा उनकी अम्वाल की कसरत और औलाद की कसरत के तौर पर उसे पेश फरमाया है। बस ये आयत कुरानी मुहावरा है और कुरानी मुहावरे की मदद से इसको हल किया जा सकता है, जो दूसरी जगह कसरत से खुले खुले तरीके पर इस्तेमाल फरमाया गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लाभ और लाभ जब जीनत और तफाखुर में बदलते हैं तो इंसान जरूर अपनी तौफीक से बढ़कर खर्च करने पर मजबूर हो जाता है, और उसकी गुलामी का यह पहला कदम है, पहला अंधेरा है जो उसकी जात पर छा जाता है और उसे देखने की सलाहियत छीन लेता है। ऐसे लोग जब मजबूर होते हैं तो कर्ज उठाते हैं जो जानते हैं कि वापस नहीं कर सकते, वो ऐसी तिजारतों की स्कीमें बनाते हैं जिनमें होता कुछ भी नहीं और लोगों को धोखे देके उनके पैसे खा जाते हैं, क्योंकि किसी तरह से नफ्स की इस हिर्स को पूरा करना है। और दूसरी शक्ल इसकी बनती है वो होशियार लोग जिनको कमाना आता है और कमाने के बाद वो आला मकासिद पर खर्च करने की बजाय पैसा इकट्ठा करते हैं और महज दौलत में किसी दूसरे पर फौकियत ले जाना उनके लिए एक रूहानी या जो भी उसका नाम रखें एक कल्बी तस्कीन का जरिया बनती है। लेकिन ये कल्बी तस्कीन का जरिया दर हकीकत उनके लिए धोखा साबित होती है, क्योंकि जब तक एक शख्स का पैसा दूसरे के मुकाबले पर बढ़ता रहे, उसको ये मालूम हो कि अब मैं एक मिलियन से 2 मिलियन में दाखिल हो गया, मिलियनेयर के दायरे से बिलियनेयर में दाखिल हो गया, तो दायरे जब तक वसी होते चले जाते हैं किसी हद तक सुकून मिलता है, लेकिन जो ही ये दायरा अपनी हद इस्तेताद पर पहुंचकर ठहर जाता है وہاں وہ نفس کی بے قراری مزید کی طلب سینے کی آگ کہ میں اور کیا کروں کس طرح بڑھاؤں اور بڑھانے کی بجائے جب وہ چیز گھٹنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وہ چیز جو اس کے سامنے نشو و نما پاتے ہوئے بڑی ہوئی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی اور یوں معلوم ہوا جیسے اب اس کو پھل لگنے کے وقت آ گئے ہیں تو پھل کچھ بھی نہیں لگتا یہ جو ہرس ہے یہ اور بڑھ جاتی ہے طلب کی کوئی حد نہیں ہے اور بالآخر ایسے انسان ہمیشہ محروم دنیا سے جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی دولت کو پھر سیاست پر استعمال کرتے ہیں اور تکاثر فی الاولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہاں جا کر یہ دونوں مجرم ایک دوسرے میں ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پھر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں یہ جو گٹھ جوڑ ہے سیاست اور دولت کا آج کی دنیا میں تمام ملک جن سے امن اٹھ چکا ہے ان کا آخری نقطہ یہی ہے کہ وہاں دولت نے سیاست سے سمجھوتا کر لیا یا دولت سیاست کو غلام بنائے ہوئے ہے یا سیاست دولت پر غالب آ گئی ہے اور دولت کھینچنے کا ذریعہ بنا کر حکومت ہو رہی ہے جن جن ممالک میں یہ بات ہوئی پھر ان کے سنبھلنے کا باقی بعد میں کوئی سوال باقی نہیں رہتا ہر قسم کی کرپشن بددیانتیاں اور جرائم پھر بڑی سطح پر وہاں پردیش پاتے ہیں اور بدقسمتی سے اب مغربی دنیا میں جہاں سیاست نسبتاً زیادہ صاف اور پاک تھی ابھی بھی ہے نسبتاً دولت کی آمیزش کے نتیجے میں گندی ہو رہی ہے دن بدن یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ سیاست کو دولت کمانے کا ذریعہ کیسے بنایا جائے اور باوجود اس کے کہ یہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں عوام کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا بھی کیا جاتا ہے مگر جس نہج پر ایک دفعہ قوم کا مزاج چل پڑے پھر رک نہیں سکتا بس تکاثر ایک بیماری ہے یعنی پیسہ بڑھانا ایسی بیماری ہے جو از خود اپنے آپ سے ضرب کھاتی رہتی ہے سیاسی طاقت بڑھانا ایک ایسی بیماری ہے جو از خود اپنے آپ سے ضرب کھاتی رہتی ہے بس تکاثر سے بہتر اسے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا اور قرآن کریم نے تکاثر کے مضمون کو اور جگہ بھی خوب عمدگی سے کھولا ہے اور بعض اور مثالوں کے ساتھ بھی اسے واضح فرمایا ہے اور اس انجام کو ہمارے سامنے ننگا کر کے دکھا دیا ہے فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے انسان تجھے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے یہاں تکاثر فی الاموال نہیں فرمایا تکاثر اے انسان تجھے بڑھتے چلے جانے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے یعنی اموال میں اور طاقت میں سبقت لے جانے میں بالکل اندھا کر دیا ہے الہا میں نے غافل کر دیا یا ہلاک کر دیا دونوں معنی اس مضمون میں یہاں پائے جاتے ہیں الہاکم التکاثر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جنون تم پر سوار ہو چکا ہے اس نے تمہیں اپنے مفادات سے اپنے مقاصد سے بالکل غافل کر دیا ہے اور ہلاک کر دیا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگے اب جو قبروں کی زیارت کرنا ہے یہ بھی بہت ہی دلچسپ محاورہ ہے اس میں دونوں معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں یعنی کم سے کم دو معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ تم اپنے اموال اور اولاد اپنی طاقت سیاست اور اپنی اقتصادیات کو ترقی دینے کی خاطر اتنے گر چکے ہو کہ قبروں سے بھی مانگنا پڑے تو نہیں روکو گے اور قبروں سے بھی مانگو گے اور امر واقعہ یہ ہے کہ ان معنوں میں بین ہی یہی صورتحال تیسری دنیا پر مسلط ہو چکی ہے مذہب چاہے اسلام ہو یا ہندو ہو یا جو مذہب کا نام رکھ لیں ان میں بعضوں میں عقیدتاً بعضوں میں توہمات کے رنگ میں مردہ پرستی شروع ہو چکی ہے مردوں سے مانگنے کا رجحان ہے और ये जो मुर्दा प्रस्ती है इसने जापान को भी खाली नहीं छोड़ा और कोरिया को भी और चीन को भी खाली नहीं छोड़ा। अब आओ जात की लोगों के सामने सर झुकाना और उनसे उम्मीदें वाबस्ता करना, अब ये रोजमर्रा का बढ़ता हुआ फैशन है। और हमारे मुल्क में आप देखें दाता के दरबार पे पहुंच जाते हैं, जिनको अपने घरों में खुदा के हजूर सर टेकने का मौका नहीं मिलता, जो रातों को उठ के उसके हजूर सजदा रेज होना जानते ही नहीं, वो दिन की रोशनी में लोगों के सामने दाता के दरबार पहुंचते हैं और दो मकासद अपनी तरफ से हासिल करते हैं। अव्वल अपने लिए अमवाल उनसे तलब करते हैं, दोयम अपने लिए औलाद उनसे तलब करते हैं, अपनी सियासत उनसे मांगते हैं। और इस दिखावे के जरिए कि हमने दाता के दरबार पर चादर चढ़ाई है, अवाम से भी अपनी हरदिल अजीजी की भीख मांगते हैं। कहते हैं अगर तुमने हमें और कुछ नहीं देखा तो ये तो देखो कि वो मुर्दे जिनसे तुम मांगते हो हम भी उन्हीं से मांग रहे हैं। और इतना एहतराम है तुम्हारे मजहबी जज्बात का हमें कि आगे पीछे कभी तौफीक मिली ना मिली, मगर अब हम जबकि हुकूमत पर काबिज हो गए हैं या होने वाले हैं तो देखो हजरत दाता के दरबार पर जाकर उनके सामने माथे टेक रहे हैं, उन पर चादरें चढ़ा रहे हैं। तो भीख है सवाए खुदा के हर तरफ भीख की, दाएं तरफ भी भीख, बाएं तरफ भी भीख, अवाम से भी भीख, बड़े लोगों से भी भीख और मुर्दों से भी। तो ज़ुरतुमुल मकाबिर का इससे बेहतर नक्शा और क्या हो सकता है? ऐसे पागल हो गए हो तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने में कि कब्रों की ज़ियारत करने लगे हो। और दूसरा माना जो आखिरी और बहुत ही पुरजलाल माना है कि तुम तो कब्रों के किनारे तक जा पहुंचे हो, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, क्या तुम्हें अपना अंजाम दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे सामने मकबरे फैले पड़े हैं, तुमसे पहले ऐसे ही लोग थे जैसे तुम हो जिनको इस जुल्म ने मकबरों तक पहुंचा दिया, वो दफन है, जेर जमीन दफन है। उनको देखो और होश करो कि तुमने अपना क्या अंजाम बना रखा है। बस वो जो हुतामा होकर वो खेती जिससे तवक्को थी कि बहुत वो बराबर साबित होगी, घर हमारे गलों से भर देगी, अगर बराबर होने से पहले उस पर कोई हवा चल पड़े और वो जर्द हो जाए और जर्द होकर पारा पारा हो जाए और उसके जमींदार को उसमें कोई दिलचस्पी न रहे, हवाएं आंधियां चलें, रंगेटती ही उसको टुकड़े टुकड़े कर दें, मिट्टी में मिला दें और फिर उस पर पांव पड़ने लगे। ये जो नक्शा है ये वो आखिरी नक्शा है जो तकासुर का नक्शा है, मकाबिर तक पहुंचने का ये नक्शा है जो खींचा गया है। तो फरमाया इसकी खातिर तुम अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हो। अब आप देख लें कि सियासत ने माल के साथ मिलकर दुनिया में क्या तबाही मचाई है और इंसान ने खुद भी जाती तौर पर अमवाल की तलब में और जो सियासी ताकत है उसकी ख्वाहिश में दुनिया में कितने मसाइब बरपा कर रखे हैं। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस दुनिया में हर जगह करीबन यही कुछ हो रहा है। इंसानी जिंदगी की कीमत ही कोई नहीं रही, इंसानी इज्जत की कोई तौकीर बाकी नहीं रही। और हर दफा जब आप सवाल करें क्यों, तो या पैसे की खातिर या सियासत की खातिर, ये दो चीजें ऐसी गालिब आ जाती हैं फिर और इंसानी दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लेती हैं ये देखने की होश ही बाकी नहीं रहती। ये आखिरी तभी लाजमी नतीजा है जिससे इंसान बच नहीं सकता। और होता है रोजाना घरों में शुरू, आपकी औलाद में इसके आसार नुमाया होकर आपकी आंखों के सामने आते हैं, आप उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। आपकी बीवियों में, आपकी बच्चियों में, आपके लड़कों में ये आसार जाहिर होते हैं, आप उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं करते। और अगर मुतवज्जे हों तो वो वक्त है कि आप इनकी बीख कनी करें, वरना बाद में फिर पछताते रह जाएंगे और कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। मसलन औरतें हैं मिसाल के तौर पर, इनको हम पर्दे के मुतालिक ताकीद करते रहते हैं, लेकिन 100 उजर हैं जिनमें जायज़ भी बहुत हैं कहते हमने कमाना है, हमने बाहर निकलना है, तालीम हासिल करनी है बच्चियों ने, अब हम कैसे बंद होकर घरों में बैठ रहे हैं। हम उनको कहते हैं बिल्कुल घरों में बंद होकर न बैठो, लेकिन अपनी इज्जतों को बंद रखो, उनको खुली छुट्टी न दो, उनको सरेआम बेराहरवी की इजाजत न दो, तो फिर पर्दे की जो भी शक्ल है वो ठीक है, लेकिन इजाजत मांगते हो किसी और बहाने से और इजाजत को इस्तेमाल करते हो किसी और गरज के लिए, और वो गरज जीनत और तफाखुर है। बस वो हर वो बज़ाहिर नेक और शरीफ औरत, बज़ाहिर इन मानों में कि उसके अंदर कोई ऐसी बदीना आप देखेंगे जो जिस पे उसको मुलज़म कर सकें, उसको मुजरिम दिखा सकें, लेकिन एक कमजोरी उसकी आपको दिखाई देती है और उसमें किसी बहस की जरूरत नहीं रहती। वो जब बाहर निकलती है तो सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह बन ठन कर निकलती है, इस इरादे के साथ अपने आप को तैयार करती है कि गैर नजरों को अपनी तरफ खींचे और अपने हुस्न को नुमाया करे। जबकि कुरान करीम ने पर्दे की जो तारीफ फरमाई है उसकी मरकजी तारीफ यह है कि अपनी जीनत पर, जीनत को गैर आंखों के सामने उभारा ना करो। बस वो जरूरत कैसी जरूरत है जिसके खातिर इजाजत लेकर उसको बर बेमहाल इस्तेमाल करो और अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करो, अपनी औलादों के खिलाफ इस्तेमाल करो। तो ये जो जीनत है ये तो कौमों की इस्मत पर बात कर देती है, उनको आला मकासद के लिए खिदमत की तौफीक ही बाकी नहीं रहती। इसके बरक्स वो बच्चियां भी हैं, ख्वातीन भी हैं, जो ज्यादा उस तरह का पर्दा नहीं करती जैसे बुरका पोश हों, लेकिन आप उनको खिदमत दीन पर मामूर देखेंगे, देखें कितनी सादगी उनके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। इतना वक्त ही नहीं मिलता कि तैयार होकर बाहर निकलें, एमटीए का वक्त हो रहा है उनको, घर के काम भी करने हैं, नाश्ते भी तैयार करने हैं, बच्चों को रुख्सत करना है, अफरा तफरी में जिस हाल में है दौड़ा दौड़ी दौड़ी मस्जिद आकर वो खिदमत दीन में मसरूफ हो जाती हैं, और उनको देखकर कोई बीमार नजर भी अगर पड़े तो सेहतमंद हो सकती है, मजीद बीमार नहीं हो सकती, उनसे दिल पाक होते हैं। ये वजूद हैं जिन जो इस्लाम पैदा करना चाहता है सोसाइटी में, एक मजबूत कवी हिस्सा जो भरपूर जिंदगी में हिस्सा लेता है और किसी जिंदगी की जायज जरूरत से महरूम नहीं रहता। मगर निस्वानियत को लोगों की रजूलियत जाया करने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की इस्लाम इजाजत नहीं दे सकता। निस्वानियत के खास मकासद हैं, जिस माहौल में वो मकासद हैं वहां उसको उभारना, उसकी जीनत से फायदा उठाना कुरान करीम उसकी इजाजत दे रहा है, उसकी हदबंदी कर रहा है, उसके इर्द गिर्द खतूत खींच रहा है, देखो तुम्हारे बच्चे हैं इनके सामने अच्छी देखा करो, ये नहीं कि झाटे फुलाकर बच्चों के सामने आ जाओ और मार्केट में जाना हो तो खूब बाल संवार कर बल्कि उभार कर और बखेर कर इस तरह निकलो कि तुम्हारे पीछे उनकी झालरें लहराती हुई चल रही हों। ये गलत तरीक है, तुम अपने घर में अपने बच्चों के सामने प्यारी क्यों नहीं बनती, अपने भाइयों अपनी माओं अपने बापों के सामने क्यों अच्छी नहीं बनती, उनकी नजर में क्योंकि पाकीजगी है, इसलिए जब तक तुम उनके सामने अच्छी नहीं बन सकती जब तक तुम्हारी नजर में पाकीजगी की कीमत ना हो। बस जीनत और तफाखुर में ये सारे पैगाम हमारे सामने रख दिए, और अमर वाकया ये है, आप इंसानी नफ्सियात पर गौर करके देखें कि कीमत इंसान की नीयतें कीमतों से तय पाती है, और इंसान की नजर में जिस चीज की कीमत है वही फैसला करती है कि नीयत कैसी होगी और इस नीयत को किस शक्ल में अमली दुनिया में ढाला जाएगा। बस अगर नीयत में पाकीजगी ना हो तो जहां पाकीजा आंखें हैं वहां दिखाने का शौक ही कोई नहीं रहता, अपनी बला से हों या ना हों, जैसी वो आंखें हों वैसी वो आंखें ना हों, मजा क्या कि जो नजर पड़ती है पाकी से पड़ती है। हां जहां जरा थोड़ी सी थोड़ा सा हिजान पैदा हो जाए, जहां नजर में तलब पैदा होनी शुरू हो जाए, जहां हमें महसूस हो कि हमारी पूजा की जा रही है। अब वो औरतें जिनके मुताबिक मैंने कहा है, बजाहिर उनमें आप कोई जुर्म नहीं देखेंगे, अपनी जात की हिफाजत करती हैं, मगर कुरान करीम में जो ये तारीफ फरमा दी कि उसने अपनी हवा को अपना माबूद बना लिया है, ये बीमारी शुरू हो चुकी है। और जब तक कोई नजर इबादत नहीं करती उस तक तक पूरा सुकून नहीं मिलता। और ये नजरों की इबादत करवाना बहुत ही खौफनाक और मोहलिक बीमारियों पर मुंतज हो जा करता है, और ये मर्ज आगे बढ़ता है और फिर उसको रोका नहीं जा सकता। वो नस्लें जो देख रही हैं कि हमारे मां बाप में जीनत और तफाखुर है, ये हो ही नहीं सकता कि वो उन कदरों को अपनाते हुए ऊंचे बड़े ना हों। उनको अपनाते हुए बड़े होते हैं, वही चीजें उनके अंदर समोई जाती हैं और पहले से ज्यादा नशोनुमा पाती हैं। ये सूरत हाल अगर इसी तरह जारी रहने दी जाए तो फिर इन चीजों से भी लज्जत याबी की ताकत खत्म होने लगती है। उसके बाद दिल खुश हो जाते हैं और खालिसतन अपनी बड़ाई यानी माबूद होने की आखिरी मंजिल, जहां दुनिया का सर अपने सामने झुकाओ, अपने अमवाल को ज्यादा करके या अपनी ताकतों को बढ़ाकर, उस वक्त तक तुम्हें चैन नसीब नहीं होगा। ऐसे लोग बाज़ दफा ज़ीनत और तफाखुर के दायरों से निकल ही चुके होते हैं। बाज आप सेठों को देखेंगे कि उनको कतन कोई होश नहीं अपने कपड़ों की, बल्कि बाल बखेरे हुए, बुरे हाल में, बटन खुले हुए वो तिजोरियों पर बैठे होते हैं, मगर जानते हैं कि ये है हमारी शान, हमारे पास दौलत है, इन लोगों के पास दौलत नहीं है। और बगैर जीनत के भी वो अपनी बड़ाई खुद महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नजर दौलत में मजा देख रही है। तो हर इंसान जो माबूद बनकर उभरता है, वो किसी न किसी खास अपनी नफसानी इलाही गरज के साथ माबूद बनता है। जिसकी नजर जीनत पर ज्यादा है वो जीनत का माबूद, दिखावे का बुत बन जाता है। जिसकी नजर दूसरों पर अपनी तमदनी बरतरी हासिल करने का शौक है, वो फिर रस्म और रिवाज के बुत को अपनाता है और रस्म और रिवाज का खुदा बनकर उभरता है। और आखिरी सूरत उसकी ये है कि दौलत के सरचश्मे पर कब्जा कर ले और ताकत के सरचश्मे पर कब्जा कर ले। जब ये माबूद बन जाए तो दुनिया की हर दूसरी कदर अपनी कीमत खो देती है। कोई इस राह में हायल होने की कोशिश करेगा उसका सर तोड़ दिया जाए, खा उन लोगों के बच्चे अगवा करके आप अपनी सियासी ताकत को बहाल रखें, खा मासूम आदमियों का कत्ले आम करवाकर अपना रोब कायम रखें कि हम हैं साहिब औलाद, हम जत्थे वाले लोग हैं, तुम क्या चीज हो, तुम हमारी मुखालफत करने की जरूरत कैसे कर सकते हो। और फिर अमवाल के तमाम जरियों पर काबिज होने के जरिए वो जो सरचश्मे हैं इक्तसादी दौलत के, उन पर काबिज होने के जरिए वो अपनी बड़ाई को जारी रखते हैं और इसको दायम रखने की कोशिश करते हैं। ये खुलासा है सारी इंसानी जिंदगी का। अब आप दोबारा इन बातों को सुनकर और समझकर जब भी पाकिस्तान का कोई अखबार उठाएंगे या हिंदुस्तान का कोई अखबार उठाएंगे या दूसरे मुल्कों के अखबार उठाएंगे, आपको यही खुलासा नजर आएगा। हल्ले सारी अफरा तफरी, सारी दौड़, सब चक्कर इन्हीं इसी मरकज के गिर्द घूमते हैं जो तकासुर फिल अमवाल और तकासुर फिल औलाद है। और सारी दुनिया को मुसीबत देखें कितनी डाली हुई है, तमाम दुनिया का अमन जहन्नम में तब्दील हो चुका है। और वो लोग जो दिखावे की राह से इन चीजों तक पहुंचते हैं, उनको इससे कोई गरज नहीं होती कि दुनिया में हकीकतन वो इंसान की या अपनी कौम की खिदमत करते हैं कि नहीं। उनको इस बात से गरज होती है कि दुनिया उनको एक खिदमतगार के तौर पर देख रही है कि नहीं, या उनकी कौम उनको अपने खादिम के तौर पर अगर देखती नहीं तो कम से कम दिल में गुमान करती है कि ये हमारे खादिम है। ये तासुर कायम करने पर सारा जोर रहता है, और उससे नीचे इस तासुर को कायम करने की जहां तक ठोस बुनियादों का ताल्लुक है उसमें इनको जर्रा भर भी दिलचस्पी नहीं रहती। मोमिन इन चीजों के बिल्कुल बरक्स है, मोमिन इन सब अंधेरों से आजाद है। वही है जो देखता है, और वही है जो नेक अंजाम को पहुंचता है, वही है जिसकी आखिरत की जमानत दी जाती है। बस कुरान करीम ने इन तमाम इंसानी कमजोरियों का जिक्र फरमाते हुए उन्हें कुल्लियत अंदाज नहीं फरमाया कि इनके अंदर कुछ भी तुम्हारे लिए बाकी नहीं। एक फितरी हकीकी तकाजे के तौर पर ये आवाज कैसी आ रही है जी बाहर से? बाहर वो शोर था, मैंने कहा शायद हमारे निजाम में कुछ खराबी हुई है। इस पहलू के साथ अगर आप अपने अमाल का, अपने नफ्स का जायजा लेना शुरू करें तो अल्लाह ताला आपको दुनिया का निजात दहिंदा बना सकता है, और निजात दहिंदा बनने के लिए पहले अपने नफ्स को निजात देनी जरूरी है, और उसके लिए सबसे आला सबसे उम्दा तरीका यह है कि अपने आप को खुदा की नज़र में रखें और ये फैसला करें कि उसी नज़र की हमारे नज़दीक कीमत है, बाकी किसी नज़र की कीमत नहीं। उस नज़र के अजीब हाल है, बाज़ दफ़ा आपको दौलतमंद देखकर खुश होगी, बाज़ दफ़ा गरीब देखकर खुश होगी। इसलिए अगर उस नज़र को खुश करना है तो उसकी खातिर गुरबत इख्तियार करना भी आपके लिए लज्जत पैदा करेगा, क्योंकि आपने उसको खुश करना है। उसकी खातिर दौलत इख्तियार करना भी आपको खुश करेगा, क्योंकि उसकी रजा के ताबे है। बस ऐसे इंसान की जिंदगी की काया पलट जाती है, उसकी जिंदगी के कवानीन बदल जाते हैं, उसका उठना बैठना, लोगों में रहना सहना, उनसे मामलात करना एक नए रंग पर आ जाता है जिसका आम इंसानों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और खुदा जिनको तकासुर फिल अम्वाल का जुनून हो वो इसलिए है कि वो उन्होंने अपने नफ्स की परस्तिश करनी है, और अगर वो खुदा की परस्तिश करने लगे तो इस तकासुर फिल अम्वाल में उनको कौड़ी भी की भी दिलचस्पी नहीं रहती। फिर वो माल जो खर्च करते हैं उसको खुदा की राह में लुटाने में दिलचस्पी पैदा हो जाती है, और जितना मजा एक कमाने वाला कमाकर इकट्ठा करने में महसूस करता है उससे बहुत ज्यादा मजा खुदा के बाद बंदे उस कमाई को खुदा के बयान करदा शरायत के ताबे हकूक का ख्याल रखते हुए मुतवाजन तरीक पर खुदा की राह में खर्च करते हैं और लज्जत पाते हैं। कभी आप किसी चंदा देने वाले अहमदी को जो इस वजह से चंदा देता है कि मैंने अपने रब को राजी करना है, चंदा देने के बाद मगमूम नहीं पाएंगे। टैक्स देने के बाद तो आप कई चेहरे देखेंगे, वो चेहरे उतर गया, मुसीबत पड़ी, क्यों जी क्या हुआ, आज तो बड़ी चट्टी पड़ गई, वो टैक्स जो हमने छुपाया हुआ था इतनी देर से वो नंगा हो गया, पकड़े गए, आज हमें देना पड़ा है। लेकिन कभी किसी चंदे देने वाले को आप सर फेंक कर चलते हुए मगमूम नहीं देखेंगे, क्यों जी क्या हुआ कि जी आज इतना चंदा देना पड़ा, सवाल ही नहीं पैदा होता, नामुमकिन है। हाँ, ऐसे मगमूम लोग जरूर देखेंगे जो चंदा नहीं दे सके और उनकी आंखें आंसू बहा रही हैं, मैंने खुद देखे, बारहा देखे, आते हैं थोड़ी रकम पेश करते हैं और इस कदर बेचैनी महसूस करते हैं, इतना दुख महसूस करते हैं कि हमने ज्यादा की तौफीक नहीं, हम चाहते थे कि ज्यादा दें, दुआ करें कि अल्लाह हमारी हसरतें पूरी करे। ऐसी दुनिया भी आपने कहीं और देखी है जो जमात अहमदिया की दुनिया है? बस यही वो मजमून है, उनके यहां तकासुर की तमन्ना है खुदा की खातिर खर्च करने की खातिर, उनके यहां तकासुर की तमन्ना है ताकि अपने गरीब रिश्तेदारों की जरूरतें पूरी कर सके, अपने दुखी हमसायों की, अपने बीमार साथियों के लिए कुछ वो शिफा, कुछ सेहत के, कुछ उनके पेट भरने के सामान कर सके। उनको लगन होती है कि खुदा हमें और दे तो हम और खर्च करें। और कई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे दुआ के लिए इस तरह बाहर लिखा कि कि हमारे दिल में एक हर वक्त एक आग सी सुलगती रहती है, काश हमें तौफीक हो तो हमने हम फलां गरीब रिश्तेदारों की मदद कर सकें, फलां मुसीबत ज़दा की मदद कर सकें। दुआ करें अल्लाह हमें तौफीक दे, और फिर खुदा उनको तौफीक देता है और वो खर्च करते हैं, अपने वादों पर कायम रहते हैं। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिलों में कुर्बानियों की आरज़ूएं पाल रखी थी और खुदा ने तौफीक बख्शी और उन्होंने उन कुर्बानियों की राह में अपना जान और माल को फिदा किया और देखो कैसे मुतमिन हो गए। क़ज़ा नहबहु, मुद्दतों की आरज़ूएं पूरी कर, वह मिनहुम मन यंतज़िर, उनमें ऐसे भी हैं जो इंतजार में बैठे हैं कब खुदा हमारी हसरतें पूरी करने के सामान करेगा। तो देखो तकासुर तो तकासुर ही है, मगर नीयतों ने इन दोनों तकासुर की किस्मों में कितना जमीन आसमान का फर्क डाल दिया। एक तकासुर है नेक इरादों की खातिर नेक राहों पर खर्च करने के लिए, इसी तरह अमवाल का औलाद का हाल है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत के लिए कसरत की दुआ मांगी, बल्कि नसीहत फरमाई कि ऐसी औरतों से शादी करो जो वलूदन वदूदन हो, मोहब्बत भी बहुत करें तुमसे और बच्चे भी बहुत पैदा करें। इसलिए बसा औकात जब फैमिली मुलाकात में मैं अच्छे खुश जोड़ों को देखता हूं उनसे कहता हूं और बच्चे पैदा करो, वो समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूं, हालांकि मजाक मजाक नहीं, मेरे जहन में हमेशा यही रसूलुल्लाह सल्लम की नसीहत है और मुझे भी खुशी होती है हम भी बच्चे बच्चे पैदा करके भी बढ़ें और तबलीग के जरिए से भी बढ़ें और खूब नशोनुमा पाएं, क्योंकि यही तो हैं जिनके साथ दुनिया का अमन वाबस्ता हो चुका है, दुनिया के नेक अंजाम अब इन पर बिना रखता है अपने। ये कायम रहेंगे तो दुनिया का नेक अंजाम कायम रहेगा, उसकी उम्मीदें कायम रहेंगी। अगर ये कमजोर हो गए ये मिट गए तो दुनिया के नेक अंजाम की कोई जमानत नहीं दी जा सकती, ये एक ठोस हकीकत है। बस अपनी इन कदरों को जो इस हवाले से इस आयत के हवाले से मैंने आप पर खोली है इनको पहचानो, और हर वो अंधेरा जिसका इन आयात में बयान हुआ है उसके उसकी कला कम करने उसको अपने सीने से नोच फेंकने की कोशिश शुरू कर दो। और ये तफसील इसलिए मैं बयान नहीं कर सकता, बाद पहले खुतबों में मैंने बसा औकात तफसील से भी ये बीमारियां बयान की हैं, इसलिए कि अगर इधर शुरू हो जाए तो ये सिलसिला फिर खत्म ही नहीं होगा। इंसान किस किस किस्म की अंदरूनी रूहानी बीमारियों में मुबतला होता है, कैसी कैसी गलत फहमियां अपनी जात के मुतालिक रखता है, अपनी औलाद के मुतालिक रखता है, अपने प्यारों से जो उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, अपने दुश्मनों के मुतालिक क्या क्या गलत रवैये अख्तियार करता है, ऐसा मजमून है जो सारी इंसानी जिंदगी पर मुहित है। किस किस को बयान करूं और किस किस को छोड़ूं, इसलिए असूलन मैंने आज आपको ये खुलासा पेश कर दिया, आपके सामने वो खुलासा पेश कर दिया है जो कुरान करीम ने निकाला है। तीन किस्म के अंधेरे हैं जो अगर तुम पर छा गए तो तुम्हारी कानों पर भी पर्दे पड़ जाएं, तुम्हारे कानों पर भी मोर लग जाएगी, तुम्हारे दिलों पर भी मोर लग जाएगी, और तुम्हारे आंखों पर पर्दे पड़ जाएंगे फिर या देख भी नहीं सकोगे कि तुम्हारा मफाद है किस चीज में, देखोगे भी तो गलत फैसले करोगे क्योंकि कुव्वत इदराक बीमार हो चुकी होगी। दिल वो कुव्वत इदराक है जो उन पैगामात को परखता है और उनसे नतायज अखज करता है जो आंख या कान के सुराख से इंसान के अंदर दाखिल होते हैं। और भी जराए हैं मगर यही दो हैं जिन पर बिना है असल में। फजालना हो समीम बसीरा, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सबसे बड़ा एहसान जो इंसानी नफ्स पर खुदा ताला ने फरमाया है वो ये है कि देखो तुम मां के पेट में किस हैसियत में थे, अंधे, तीन किस्म के अंधेरों में घिरे हुए। अब वहां भी देखो तीन अंधेरों का जिक्र मिलता है, और अचानक क्या देखते हो कि तुम मां के पेट से बाहर आते हो, जालना हो समीम बसीरा, इस बच्चे को हमने समी भी बना दिया और बसीर भी बना दिया, वो सुनने भी लग गया और देखने भी लग गया, और समी को पहले रखा है और बसीर को बाद में। इसमें और भी हिकमतें हैं, मगर एक ये भी है कि मां के पेट से बच्चा पहले सुनना शुरू करता है बाद में देखने लगता है. और शुरू में मां के पेट में बच्चे का बैरूनी दुनिया से रابطہ सिर्फ कान के जरिए है और जब बाहर निकलता है फिर आंखें खुलती हैं. वरना पेट में तो आंखें हो भी तो दिखाई कुछ नहीं देता, अंधे का अंधा रहता है. तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जाल ना हो समीम बसीरा, बाहर आया तो हमने उसे सुनने वाला भी बना दिया और देखने वाला भी बना दिया. और आवाज के जरिए मां के पेट में पैगाम देने का निजाम खुदा तआला ने जारी फरमाया है. इसीलिए उस जमाने में दुआओं का जिक्र है, जिक्र इलाही का जिक्र है, क्योंकि बच्चा उन बातों को सुनता है. और बसा औकात जो माहौल में शोर पड़ रहा है उससे बद असर कबूल करता है, माहौल में पुरसकून बातें हो रही हैं उससे सुकून हासिल करता है. और अब तो साइंसदानों ने इसकी तहकीक करके इसे वहमे का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत में साइंसी दरियाफ्त का हिस्सा बना लिया है, कथित तौर पर साबित शुदा हकीकत है. तो समीम बसीरा ये दो चीजें हैं जिनके जरिए इंसान तमाम माहौल गिर्दो पेश बल्कि बहुत दूर दूर की बातें भी अखज करता है. और लेकिन अगर अंदर दिमाग ना हो उसके तजिए के लिए तो आंखें खुली हैं, कान मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं जी इसका दिमाग डेड हो गया, ऑक्सीजन जानी बंद हो गई और वो दिमाग जिसने सारा कंप्यूटिंग करनी थी वो करने से आरी हो गया. हालांकि आंख देख रही है, कान सुन भी रहे हैं, उनका नतीजा कोई नहीं निकल रहा. वही आंख अंधी नहीं हुई होती बल्कि जो देखती है उसका पैगाम अंदर नहीं पहुंचता. जो कान सुनते हैं उसका कोई मकसद दिमाग हासिल नहीं करता कि क्या सुना जा रहा है. यही नक्शा है कुरान करीम ने जो खींचा है कि फिर ऐसे लोगों का हाल यह है कि वो अंधे हो जाते हैं, वो बहरे हो जाते हैं, उनके दिल मोरज़दा हैं, उनके ऊपर उनमें यह सलाहियत ही नहीं होती कि जो कुछ गिर्दोपेश में देख रहे हैं उससे इस्तफादा कर सकें. बस इन खतरात के खिलाफ आप बेदार हो जाएं, अपने आप को उन पैगामात को समझने की सलाहियत के साथ जिंदा रखें, क्योंकि अगर यह सलाहियत मर गई तो आप मर जाएंगे. वो पैगामात जो आपके कान सुनते हैं, वो पैगामात जो आपकी आंखें देख रही हैं, उनको इन दोनों सलाहियतों को जिंदा रखें तो लाजिम है कि आखिर पर जो इनसे नतीजा निकाला जाता है वो नतीजा निकालने की सलाहियत को भी जिंदा रखा जाए, वरना फायदा कुछ नहीं. और अमर वाकया यह है कि एक ही चीज कुछ लोग देखते हैं दो मुख्तलिफ नतीजे निकालते हैं और वहां दिल की मोहर की बात खुलकर सामने आ जाती है. बहुत से बच्चे हैं जिनके मिजाज इसलिए बिगड़े हैं कि उन्होंने टेलीविजन के ऊपर जराइम देखे हैं और कत्ल वारत देखा है और फख्र देखा है कि इस तरह किसी ने किसी को मारा और फिर फख्र करता हुआ वहां से निकल गया. वो बच्चे ऐसे भी हैं जो अक्सर आजकल की दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो इसको अपना मत में नजर बना लेते हैं, क्योंकि उनको रोजमर्रा अपने घर में तफाकुर की आदत होती है, छोटे बच्चे को बुली बनाने की आदत पड़ी हुई होती है और छोटी छोटी बातों में बगलें बजाने की आदत पड़ी हुई होती है. बस वो बीज जो बचपन ही से घर में बीमार बनकर उठ रहा है उससे जब कौपलें फूटेंगी तो जरूर बीमार फूटेंगी. बारिश तो एक ही तरह की है मगर बाज जगह जहरीले पौधों की नश्व नुमा को बढ़ाती है, बाज जगह अच्छे पौधों की सेहतमंद पौधों की नश्व नुमा को बढ़ाती है. बस ऐसे बच्चे जब वो देखते हैं टेलीविजन तो कहते हैं अच्छा ये बात हुई, और अगर वो पकड़ा गया बेईमान तो कहते हैं हमने ये चलाकी करनी, हम नहीं पकड़े जाएंगे. और इरादे करके बचपन से दिलों में जुर्मों की तमन्नाएं पालने लगते हैं और जब बड़े होकर बाहर निकलते हैं तो फिर उनसे यही तवक्को रखी जा सकती. कुछ ऐसे शरीफ नस बच्चे भी हैं जिनके घर का माहौल पाकीजा है और प्यारा है, वो इनको देखकर मुतनफर होते हैं. उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर हमें तौफीक मिले तो हम ऐसे जलील लोगों को पकड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे. वो जो जवाबी करने कार्रवाई करने वाली ताकतें हैं उनका दिल उनके साथ हो जाता है.
और ये फैसला घरों में हो रहा है. आपने जिस तरह अपने बच्चों को पाला है, आप ही अगली कौम के अगले हिस्से की तकदीर बना रहे होते हैं. टेलीविजन वगैरह तो बाद में आएंगी, बचपन से आपके रुझानात को बच्चे जो पढ़ते हैं, आपकी अदाओं को जो देखते हैं, ये जानते हैं कि आपका हकीकी लुत्फ किस चीज में है. दुनिया की दौलत में है या अच्छी प्यारी बातों के तस्करे में है. खुदा और रसूल के जिक्र में आपको मजा आ रहा है या बेहुदा बातों में है. ऐसे लोग अपने बच्चों की तकदीर बना देते हैं, खा उनको उनका इरादा हो या ना हो, खुद ब खुद बनती है. अब ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी नई नस्ल के लिए अल्लाह ताला ने एमटीए का निज़ाम जारी फरमा दिया. और अब वो बिगड़े हुए माँ बाप जिनकी दिलचस्पियां दूसरी हैं, अपने बच्चों पर असरअंदाज होने की सलाहियत खो बैठे हैं, यानी मनफी रंग में असरअंदाज होने की. और बच्चों को आदत पड़ गई है एमडीए टेलीविजन की. अब वो माँ बाप दूसरी लगाने लगे तो कहते हैं बिल्कुल नहीं लगानी, हमने तो यही देख ली. और बाद माँ बाप की इसलाह बच्चे शुरू कर चुके हैं. तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने जब आलमी जिम्मेदारियां हम पर डाली हैं तो आलमी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के सामान भी वो खुद फरमा रहा है. और मैं तो महज कुरान करीम की नसीहतों पर इशारे करके आपको बार बार मुतवज्जे करने की कोशिश करता रहता हूँ, मगर ये मेरा मुझे दिल में यकीन है कि खुदा के यहाँ आसमान पर यह फैसले हो चुके हैं. अल्लाह की तकदीर खूब खुलकर जाहिर हो गई है कि आज दुनिया की तकदीर जमात अहमदिया से वाबस्ता हो चुकी है. और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपकी सुन्नत का गलबा अब अगर दुनिया में होगा, और जरूर होगा, तो जमात अहमदिया ही की खातिर होगा, जमात अहमदिया के वसीले से ही होगा. बस अपने दिल को हर किस्म की जुल्मात से पाक व साफ कर लें ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो आपने तमाम तर खुदा से पाया है वो हमारे सीनों को रोशन कर दे, मुनव्वर कर दे और हमेशा के लिए वहाँ अपनी जगह बना ले ताकि ज़ुलमात फिर उन सीनों में झांक भी न सकें. अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.